ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 17 से 20। बोर्ड में 16 से 20। तो बोर्ड में 20 लिखा है तो 20 आप प्रति करेंगे, बाकी कैसे नंतपोजस्य नमन्य निर्जयो ज्ञानं क्वचित्तच्च न संगवर्जितम् कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जय स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रयः। तो पहले ये श्लोक से 16 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर इसको शब्दानुवाद अनुवाद तत्पर्य पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 16। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिहि हारं सरस्वती पद्म अजो नागाश्च कुंडले। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकार आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार दिए। ब्रह्मा जी ने कमल का फूल दिए तथा नागलोकों के निवासियों ने कानों के लिए सुंदर कुंडल प्रदान किए। श्लोक संख्या 17। तत कुत स्वस्त्यनोत्पलस्रजं तद्बी परिफं परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुकपोल कुंडलं सब्रीडहासं दधति सुशोभनम्। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिसके चारों ओर भौर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्काती हुई कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वो अत्यंत सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी जी ने क्षीरसागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, किंतु वे नारायण के वक्षस्थल पर निरंतर वास करती है। वे ब्रह्मा जी तक को तथा इस भौतिक जगत के सारे प्राणियों को वरदान देती है, फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहती है। यद्यपि वे खीरे सागर से उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी, किंतु वे तुरंत ही नारायण के वक्ष स्थल पर अपने नित्य स्थान को लौट आई। स्तनद्वयं चाति कुशोदरी समं निरंतरं चंदन कुमकुम मुखितम् ततस्ततो नूपुर बल्बु सिंचिते मिसर्पिति हेमलते वसावभो। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम चूर्ण से लेपित थी और उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती तो उनके पायल मंद झंकार करते थे और वे सोने की किसी लता के समान लगती थी। विलोकयंती निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाप्यभिचारिणी सद्गुणम् गंधर्व सिद्धा सुरजख्य चारण त्रिपीष्टपेयादिसुनान्वन्दित गंधर्वो जख्यो असुरो सिद्धो चारण तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी उन सब का निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुण से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था, अतएव वे किसी को भी शरण ग्रहण नहीं कर सकी। क्षीरसागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी देवी सागर की पुत्री थी, अतएव उन्हें स्वयंवर समारोह में अपना वर स्वयं चुनने की छूट थी। उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया, किंतु किसी को इसी योग्य नहीं पाया कि उसकी शरण ग्रहण की जा सके। दूसरे शब्दों में इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के नैसर्गिक पति नारायण की समता कोई नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 20। नूनं तपोजस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित्तस्य न संगवर्जितम् कस्यिन् महांस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रय। इसका अनुवाद है, सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचे, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया, कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छाएं नहीं जीती, यहां तक कि महापुरुषों भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, इस पर परम नियंता ईश्वर कैसे कोई हो सकता है। तात्पर्य, यहां पर परम नियंता अर्थात ईश्वर के अनुसंधान का प्रयास हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या नियंता माना जा सकता है, किंतु फिर भी ऐसे नियंता अन्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरणार्थ, भले ही किसी ने कठोर तपस्या क्यों न की हो, फिर भी वह क्रोध के वशीभूत रहता है। विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु से नियंत्रित होता है, अतः भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता, उसकी पुष्टि शास्त्र द्वारा होती है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम नियंता है, वे कभी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि वे सबके नियंता है, सर्व कारण कारणम। ओम अज्ञानंत मीरांधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादिसिद्धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत के इस प्रसंग में आप लोग जो सुन रहे हैं समुद्र मंथन की बात, समुद्र का मंथन तो शुरू हो चुका है, दोनों पक्षों के द्वारा देवता और दानव मिलित उद्योग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो 20 हाथ लगा जो हताश हो गए थे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसका निराकरण हुआ। उसके बाद कई वस्तु निकले, जैसे सुरभि गाय, पर्याप्त पुष्प, ऐरावत हाथी, उच्चस्रवा घोड़ा और स्वर्ग की अप्सराएं। तो उनमें से अभी तक तो मेरा ख्याल में केवल असुरों की तरफ से बलि महाराज को उच्चस्रवा घोड़ा को लिए, बाकी सब अलग अलग पार्टी लोग ले जाते थे। भगवान ने कुछ तो मणि ले लिए, ऋषियों ने गाय को ले लिए, है ना, इसीलिए रहते तो चालू था। अभी सुंदरी अप्सराओं के बाद, वो तो स्वर्ग चली गई, अप्सराओं के बाद तुरंत सौभाग्य की देवी भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी की प्रकट होने देख करके आप जितने समुच्चे देवता थे, ऋषिगण थे, सब आप आकर के उनको बड़े सम्मान की और उनको नाना द्रव्य ला करके विशेष रकम से पूजा और अभिषेक किए उनके। कहां से दिव्य जल लाया, पंचगव्य लाया गया, पंचामृत लाया गया, सब सुंदर सुंदर द्रव्य ला करके ब्रह्मादि देवगण, बड़े बड़े ऋषि आदि भगवती लक्ष्मी को अभिषेक किए, पूजा किए, प्रणाम किए, फिर उनको भेंट दिए। अभी ये जो श्लोक हम सुने कि प्रजापति, विश्वकर्मा, नागलोक के निवासी, ये सब कोई हार दिया, कोई कुंडल दिया, कोई फूल दिया, कोई क्या दिया, अलंकार दिया, कोई साड़ी दिया, सब माला कर दिए उनको पहनने के लिए। सुंदर साड़ी, सुंदर अलंकार, कुंडल, माला, सब कुछ लाला कर दिए, दे करके सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे ब्रह्मादि देवता समेत। क्योंकि सारे देवता हम लोग भी मनुष्य पर्यंत सब लक्ष्मी जी की कृपा की प्रार्थी हैं, हाथ जोड़कर सब खड़े हैं, लक्ष्मी जी कृपा सबको चाहिए। तो इसीलिए देखते ही तुरंत उनका पूजा, अभिषेक, प्रार्थना, भेंट सब शुरू कर दिए। लक्ष्मी पूजा के लिए किसी बोलना नहीं पड़ता ये एक ही पूजा है कि बस शुरू हो जाए, है ना। क्योंकि ये संसार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं किसी को कुछ भी काम बोलो करने के लिए तुरंत पूछेगा फायदा क्या, और ये फायदा की देवी सौभाग्य तो ही है सारे, पुंजीभूत सौभाग्य के स्रोत जो हैं, तो उनको देख करके छोड़े पूरी उनको, भाई ऐसे तो नहीं बनेंगे तो भाई हाथ जोड़ करके, अभिषेक करके, पूजा करके, भेंट दे करके उनको पटा ले, मना ले। लेकिन यहां असुरों का नाम इसने वो दूर से देखे, उनको पूजा जाता नहीं, तो लोग ने नहीं किया, चाहते तो छीन छान करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, भगवती लक्ष्मी थी। आप देखते हैं लक्ष्मी देवी, यहां बताया जाता है श्लोक में, वो पूजित होकर के, अभिषिक्त होकर के, नाना प्रकार और आभूषण और पोशाक पहन करके, सब धज करके, लक्ष्मी जी हाथ में कमल पुष्प धारण करके निकली अपने पति की ढूंढने की, पति के चुनाव में। यहां लिखा गया कि स्वयंवर, अभी उनके प्रकट हुई, अभी शादी के लिए चुनाव की, तो मतलब लगता है कि वो जन्म नहीं हुई थी, वो तो थी समुद्र में निकली। जन्म होता तो भाई एज लगता ना, बढ़ाना कुड़ाना, पाल पोषण लिखा कुछ नहीं, आई तब बस तुरंत अभिषेक पूजा हुआ, तुरंत शादी के लिए, है ना। अब लेकिन फिर भी हम जानते हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार भारतवर्ष में भी कोई बेटी शादी के योग्य होता है, शादी करना चाहता है, तो उनके पिताजी स्वयंवर रचना करे अलग बात है, कोई विशेष गुणवती रूपवती हो तो उनके लिए कोई बहुत लोग हैं, किसको चुने इसे अधर्म, जो स्वयंवर सबको बुलाकर थोक में बैठा देंगे, हमारा दोष नहीं, वो जिसको चुनेगी वो होगी स्वयंवर, उसमें माता पिता को दोष नहीं मिलेगा, नहीं तो झगड़ा मारपीट हो जाएगा, तो मुझे क्यों नहीं दिया, उसको क्यों दिया, स्त्री धन है ना। तो इसलिए बोले देखो हम झमेला नहीं फंसेंगे, हम छोड़ दिए उनके मर्जी, अब हमको दोष नहीं देना, लाखों हजारों राजकुमार बैठेंगे उनमें, छोड़ दिए, बोले आप मर्जी जिसको दे, पहले से घोषणा कर दिया जाएगा, हम उसे नहीं, वो जिसको स्वयं भरा वो अपने चुनेगी, तो फिर उनमें होड़ कंपटीशन लगेगा, किसको चुनेगी क्या करेगी। लेकिन अगर माता पिता ढूंढेंगे तो उनके ऊपर दोष लगेगा। तो यहां पर देखा जाए, यद्यपि लक्ष्मी सागर पुत्री है, अमरकुश में लक्ष्मी जी का नाम कहा गया, लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मा खिराब्धी तनया रमा, खिराब्धी तनया खिर सागर के पुत्री सिंधुजा, ऐसे कहा गया सागर पुत्री। तो सागर के पुत्री नहीं है, उनके पिताजी सागर जी को उनके लिए शादी की व्यवस्था नहीं करेंगे, कोई बात ही नहीं है, वो स्वयं अपने चॉइस से अपने सिलेक्शन करेगी, निकलेगी तो एक तरफ से असुर सब एक से असुर बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड सब समर्थ हैं, और इस तरफ सारे देवताएं हैं, और जब निकली तो सारे चाहते थे लक्ष्मी जी को ना चाहे, कौन सा गुण में लक्ष्मी जी की क्या कमी है, उनके सुंदरता, उनके अलंकार, उनके चाली, उनके बोली, उनके एक एक भागवत में वर्णन किया गया कि इतने आकर्षक थी, इतने रूपवती थी कि सब, लेकिन कुछ अब देखते थे किसको स्वयंवर के लिए किसको चुनने जाए, कमल के फूल के माला लेकर चली। अब जब चली तो भाई स्वयंवर में ही होता ना, आपस में होड़ होता है, आपस में फिर खूब आप में अपने ड्रेसिंग पेंटिंग होकर सर धज कर बैठेंगे भाई हम सिलेक्ट हो जाए, ऐसा तो ही रहता है। तो देवता की तरफ से, असुर की तरफ से खूब आपने अपने ड्रेसिंग पेंटिंग होकर लाइन में खड़े हुए होंगे, आपने अपने डिग्री फिग्री लेकर देखा हम, देखो इतने लंबा हमारा ये पोस्ट है, हमारा ये सब है। लेकिन लक्ष्मी जी अपने पति की चुनाव में दोनों तरफ से देखने लगी, स्वयं चुनाव करती थी। इसमें एक प्रोपाल में कहते हैं कि यहां भगवान के चुनाव होता है, यहां पर परम नियंता अर्थात ईश्वर के अनुसंधान का प्रयास हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी जी आपने समान पति ढूंढने के लिए वो मन में विचार कर ली, ऐसे पति में ढूंढूंगी जो निरपेक्ष होंगे, निरपेक्ष मतलब किसी के नौकरी वाकरी नहीं करते, वो स्वयं मालिक होंगे, मैं मालकिन हूं, मालकिन तो मालिक की पत्नी होना चाहिए, जब मैं सौभाग्य की देवी हूं, सारे धन भाग्य उनके मालकिन हूं, तो मैं किसी के अंडर में काम करने वाले किसी शादी करूं, मैं तो भाई जो मालिक है उनके पत्नी हूं, मालकिन होंगी। तो मालिक के चुनाव में मालकिन निकली, हम निकली तो सारे देवता और दानव लाइन में खड़े थे सदस करके। तो इसी को बोलते हैं कि जितने असुर सिद्ध गंधर्व यक्ष राक्षस चारण सब खड़े थे त्रिपिष्टप जुनि आदि, लेकिन ये किसी को ढूंढ करके नहीं पाया कि वो किसी का आश्रय में ना हो, सब हर कोई दूसरे का आश्रय में है, बहुत बड़े पावरफुल, लेकिन वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहां बताते हैं एक एक करके कौन कौन डिपेंड है, नूनं तपोजस्य नमन्नु निर्जयो, बोले बड़े बड़े तपस्वी खड़े हैं, ऐ विशाल हजार हजार वर्ष तप करके, बोले निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी इस प्रकार सोचे, जिसने महान तपस्या की है लेकिन अभी क्रोध के मारे परी गई, क्रोध जीत नहीं पाया, तपस्या तो खूब की लेकिन बहुत क्रोधी है, तो बोले तो क्रोधी है क्या, तप करने से क्या फायदा है, दिस रिजेक्ट। और ज्ञानम क्वचित्तस्य न संगवर्जितम, किसके पास ज्ञान है, अगाध ज्ञान है, बहुत डिग्रियां, जितने डिग्री हो सके पूरे विश्व में सब यूनिवर्सिटी में सारे डिग्री इकट्ठा कर लिया, लेकिन भौतिक भोग की इच्छा नहीं है, न संगवर्जितम, इच्छा नहीं गई। उसके बाद कश्चिन महान तस्य नकाम निर्जय, और कोई हर प्रकार से महान है, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान में, धन में, रूप में, मान में, हर प्रकार से महान है, तपस्या आदि सब है, लेकिन काम में फंसा हुआ, काम जीत नहीं है, नकाम निर्जय। तो स्व ईश्वर किन परतों में पास है, तो फिर किसी को मैं ईश्वर करके चुनू, मालिक किसको चुनू, सब तक के किसी ना किसी के आश्रय में लेकर पड़े हुए हैं, कोई निराश्रय नहीं है, मैंने कोई बिना आश्रय वाला नहीं है, कोई बिना आश्रय वाला एक भी नहीं दिखाई पड़े, सब किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लक्ष्मी जी सिर हर कारण आगे लंबे उनका चुनाव चलेगी, अब सब देखे एक एक देवताओं का नाम ले लेकर, अरे आपके पास ये है लेकिन ये नहीं, ये है ये नहीं, एक एक करके सब रिजेक्ट करती चली जाएगी, सबको रिजेक्ट करते करते अंत में नारायण के पास पहुंचेगी, नारायण को भी एक दुर्गुण देखे, बोले आप भी अरे ऐसा, नारायण के पास क्या दुर्गुण होगा भाई, जानते क्या दुर्गुण था नारायण, लक्ष्मी नारायण को बोलती है देखो मैं सबको रिजेक्ट करके आपको सिलेक्ट किया, मेरे और देखते भी नहीं, आपका मन में इच्छा नहीं कही, वो आई आप कभी पड़ी नहीं, मैं आई भगवान के मन में कोई स्पृहा नहीं, लक्ष्मी आए देव आए, क्या बोले आप देखे इतनी उदास है, मैंने लाखों इस तरफ लाखों इस तरफ रिजेक्ट करके आपको सिलेक्ट करके माला दौड़ के, और आप पड़ी नहीं, दिखती भी नहीं, कि ये घर ले आप इतने उदास है। सही में भगवान उदास, आज तक तो मैंने नहीं सुना, शायद हुआ भी होगा, मैं सारे पुराण आदि तो पढ़ा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के कोई संतान आपने कोई सुने, कोई बेटा बेटी है? मुझे तब तक पता नहीं चला, कभी कोई पुराण नहीं हुआ होगा। लक्ष्मी नारायण के, राधा कृष्ण के है कोई बेटा बेटी होंगी? इतने विराग है हमेशा साथ रहते हुए, बख्या विलास ही नहीं, अरे पैर में नहीं छाती में बैठ रहती है, लेकिन फिर भी इतने उदास, इतने विराग, कोई प्रभाव नहीं पड़े। कोई एरे गेरे स्त्री की बात नहीं, साक्षात सौभाग्य की देवी, सौंदर्य की खान, बाकी क्या कहें, सारे देवता दानव तो हर प्रकार से हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लेकिन भगवान, भगवान के बख्य में, उनके चरण में, उनके ऊपर हर प्रकार से, लेकिन कोई भगवान विकार नहीं गिनाता। ये है भगवान, भगवान भगवान जगदीश रख्य। भगवान के गुण किसी प्रकार से, कोई काम, कोई सुंदरता, यही तो नहीं, भागवत में तृतीय स्कंद वर्णन आता है, वैकुंठ में जो जो जाते हैं उनके अंदर भी काम वासना नहीं होती, मतलब कोई होता नहीं उनके संतान संतान अंतर के ना, कोई ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष नहीं होते, बहुत स्त्री, ऐसे वर्णन आता है वैकुंठ से पहले उनके आउटकास्ट में, आउटडोर में, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेशन से पहले गाड़ी खड़ा, आउटर में, वैकुंठ के आउटर में वो वर्णन आता है कि इतने सुंदर सुंदर स्त्रियां है, तृतीय स्कंद वर्णन आता है कि उनको हम भागवत सुंदर पढ़ने से हमारा हाल खराब होता है, इतने सुंदर का वर्णन किया गया है। और उसके साथ साथ वर्णन हुआ है कि जो पुरुष लोग रहते हैं वो भी बहुत सब प्रकार से, क्योंकि वैकुंठ में तो कोई ऑर्डिनरी जा नहीं सकते, लेकिन इतने मन को लुभाने वाली, इतने रूपवती गुणवती स्त्री होने पर भी ना तो स्त्री के मन काम में फंसता है ना पुरुष मन को, क्यों? क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, जब उनके ऊपर झांकी करते, भगवान को नहीं, भगवान के एक फूल के माला को, माला में एक फूल को, उनके पैर के नखुन में एक नख को, उनके हारों में एक मनका को, उनके पोशाक से एक, कोई साइड से उधर और बांध आए आगे पीछे, उसी पोशाक में कहीं नजर पड़ जाए, इतने सुंदर, इतने महा आकर्षक है, सारे विचार बोल्ड आउट, खत्म, कुछ नहीं रहता, कहां जाओ क्या करूं, तुम सुन लो, तो इसलिए क्या कर, कोई नहीं भगा, कोई काम ना सकता। तो इसलिए इससे पता चलता है, अगर सचमुच हम भगवान को जाने और माने तो फिर वो ये भौतिक इच्छा तो तुच्छ कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, चला जाए एक काम विजय। तो इस प्रकार यहां वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी स्वयं, जिनको पाने के लिए दुनिया में हर कोई तरसता है, यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में भी आते सभी को वही कृपा देती है, लेकिन कहीं में वो फंसे सीधा नारायण के पास जाती, नारायण का है। ऐसे कहा करते हैं लोग, लक्ष्मी जी के वाहन को नहीं जानते हमने, केवल उल्लू है, कभी कभी लक्ष्मी पद्मजोगी पद्म में उठती है ना, देखे हमने, पद्मजा एक नाम भी है लक्ष्मी जी, पद्म भी, कमल फूल भी उनके वाहन, कमल फूल में बैठकर चलती है, और कभी कभी उल्लू में बैठकर चलती है। तो ऐसे कहते हैं कि उनकी दो गाड़ी क्यों रखी है, बोलते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, कभी कभी ये गाड़ी चढ़ती है, कभी वो गाड़ी चढ़ती है। जो लोग बिना नारायण के केवल लक्ष्मी जी को चाहते हैं, खूब पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजा, वो लोग उल्लू वाली, उनके पास उल्लू में चढ़कर आएंगे। क्या विशेषता है उसमें उल्लू चढ़कर आएगी, उल्लू का क्या विशेषता जानते हैं आप, क्या है, दिन में आंधी, आंधा, अंधा हो जाएंगे, दिन में नहीं दिखाई पड़ेगी, रात में दिखाई पड़ेगी। तो जो ऐसे नारायण के बिना केवल लक्ष्मी के फॉलोअर हैं, उनको दिन में सो आंधी हो गए दिखानी पड़ेगी, धन के लोभ के मारे उनकी नजर ढंग जाएगी, अंधे की तरह काम करेंगे, रात को खुलेगा सारे ब्लैक मार्केटिंग चलेगा, रात को उल्लू की तरह बिल्कुल सजा, पूरा ओवरनाइट काम करेंगे, दिन में बिल्कुल चिता चेतन लगाए बैठे, कुछ नहीं जानते, राम राम राम। मारवाड़ी पट्टी में जाओ, देखो सब दिन में एक बार महापुरुष रूप में, कुछ नहीं देखे थे नहीं आंख बंद, रात में सो स्मार्ट है ना। तो जो केवल लक्ष्मी के अनुयायी हैं तो उल्लू वाहन, वो उल्लू की तरह उनको सब उल्लू बनाते, सब उल्लू बने हुए हैं। अरे कितने भी कमाई कर लो, दिन में आंख बंद करके रात को आंख खोल कर कमाई करो, लेकिन कुछ भी ले नहीं पाएगा, सब छोड़ के हाय हाय करके जाएगा। उल्लू, उल्लू का दूसरे शब्द अर्थ है कि पुलिस ने उल्लू बोलता ना, उल्लू कहीं के इसे बोलता ना। तो ये भी है जो उल्लू बना बन जाते हैं, लेकिन जो नारायण के साथ लक्ष्मी को चाहते हैं तो लक्ष्मी वो गाड़ी चढ़ के नहीं आती है, दूसरी गाड़ी में आती। कौन सा? पद्म के साथ, कमल फूल के साथ आती, कमल के साथ आती है, क्योंकि नारायण की चाहता है। नारायण में हर अंग कमल के समान है, तो इसलिए वो अंग वासिनी है, इसलिए कमल फूल के साथ आती है। तो उन्होंने को फिर और इस प्रकार उल्लू नहीं बनना है, क्योंकि जानते हैं कि नारायण को प्रसन्न करेंगे लक्ष्मी उनके साथ ही है, मुख्य विलासिनी अंग विलासिनी, तो इसलिए अंग जा पद्म जा होकर आएगी, फिर कोई अलग से जरूरत नहीं। लेकिन जैसे रावण है और ऐसे कई लोग और हैं जो नारायण के बिना केवल लक्ष्मी को हड़पना चाहते हैं, तो लोग क्या बनेंगे? उल्लू है ना। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी के ये चाहने वाले असुर तो सहाय नहीं थे, वो इसी प्रकार चाहने वाले थे, लेकिन देवताओं ने कम से कम लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, उनका अभिषेक किए, उनको भेंट दिए, पूजा किए, सम्मान किए, लेकिन कितने करने पर भी लक्ष्मी तो किसका है? नारायण का है, नारायण का है, नारायण का था, नारायण का है ना, और किसी का हो नहीं सकती है। तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से समुद्र मंथन में कई वस्तु निकलते समय साक्षात सौभाग्य निकलती है। समुद्र मंथन का जो मुख्य आशा क्या था? अमृत। अमृत किस चीज के लिए काम आएगा? इंद्रिय तृप्ति। और क्या है इंद्रिय तृप्ति का एक साधन? बड़े साधन में बुढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, लंबे समय तक मरूंगा भी नहीं, मेडिकल फेडिकल रोटी फूटी से जरूरत नहीं है ना। इसी के कारण से दोनों पक्ष के लोग, देवता भी और असुर भी, उनके लालच में मिलित उद्योग किए थे, कितने कष्ट उठाए है ना नहीं। लेकिन ये जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ गए बुरी तरह से, उनके सामने सौभाग्य की देवी निकली, और बहुत से ज्यादा वर्णन होने का है। पूरे समुद्र मंथन के अध्याय में जितने वस्तु निकला, एक ले गया आया, निकला वो गया वो ना फटाफट, लेकिन लक्ष्मी जी के जब प्रकट भई हो रही, सबसे ज्यादा तो उनके से प्रकट हुई, क्या हुआ पूरा लंबा कथा है। इतने समय उनके सामने रहकर भी कोई नहीं समझ पाए कि भाई सौभाग्य है, हम अमृत को छोड़कर उनके पीछे प्रयास करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है आप आओ सौभाग्य के जाओ जिसका जाना, लेकिन हमको तो अमृत चाहिए। ये समझ किसको लेगा? इंद्रिय तृप्ति के साधन में लगे रहते हुए आपके सामने कई बार महान सौभाग्य आता है, लेकिन हम ऐसे ही ऑर्डिनरी नालायक व्यक्ति हाथ से छोड़ देते हैं। चलो देखें बात में, हाँ ठीक है सार सार कर देंगे, थोड़ा चापन व्यवस्था कर देंगे, थोड़ा सम्मान कर देंगे, कुछ करेंगे, आया आया आया, नहीं आया नहीं आया, हमको तमृत चाहिए। धोखाबाज धोखे खा। लेकिन अगर सौभाग्य, क्योंकि सौभाग्य केवल नारायण के पास जाएगा फिर, क्योंकि नारायण उदास है सबसे, और कोई नारायण के भक्त हो तो उनको भी सम्मान करके जाएगा, वो तो उनके साथ है। अगर पिताजी के पास पिताजी के नाम में पैसा जमा हो गया तो बेटा घर अलग से अकाउंट खोलना जरूरी है क्या? नहीं। हाँ ऐसे हम देखते हैं समाज में, बेटा को कुछ चाहिए पिताजी से जाकर मांगता है, पापा ये दे दो पापा, तो उसको कोई भिखारी कहेगा? भिखा मांगता है, लेकिन दूसरे किसी के पास जाकर मांगेगा क्या कहेंगे? ऐसे भीख मांगे
तो इस प्रकार आपने पिता कौन है? नारायण है। तो उनके पास लक्ष्मी रहेगी तो आपकी जरूरत ही क्या, हम कहां रखेंगे? हमारे पास ट्रेजरी नहीं है, गोदरेज नहीं, नहीं कुछ नहीं, हम रख भी नहीं पाएंगे, कुछ छीन लेगा, कुछ करेगा। पापा के पास रहेगा, पापा से व्यवस्था है, सिक्योर्ड है, तो इसलिए पापा के पास रहना चाहिए। भक्त तो इस विचार से देखते हैं, और पापा से मांग लेंगे, कोई भिखारी थोड़ी करेगा हमको डांटे, दूसरे के पास जाएंगे। लेकिन दुर्बुद्धि, पापा को छोड़कर ये देवता, वो देवी, मंगलवार, शुक्रवार, अंडरवार, शनिवार, ये सब भिखारी है। आपने पापा को छोड़ करके, लक्ष्मी पति के छोड़ करके, और जो उनके आश्रित है उनकी जाकर पकड़ रखे, ये दे दो प्लीज, ये दो, ये दे दो, सब धोखे में। वो भी देंगे कहां से, उनसे ला कर देंगे, वो भी थोड़ी दिन के लिए मिलेगा, वो टेम्पररी जाएगा। मांग कर ला कर कोई रोटी खाएगा, एक आध दिन खा लिया, खा लिया हमेशा के लिए, तो पापा मां ही देंगे हमेशा के लिए, बाकी कोई नहीं दे सकता। माता पिता, और माता पिता के साथ संबंध ना करे तो कैसे आपका कल्याण होगा, है ना? नहीं हो सकता। तो इसलिए लक्ष्मी, लक्ष्मी के कहने से लक्ष्मीपति का तुरंत तो ही ध्यान होना चाहिए, उन्हीं के सम्मान होना चाहिए, उनकी पूजा। अब नारायण उनके साथ में खड़े हैं, कोई देवता उनको पूजा अभिषेक उनको भेंट स्वीकार नहीं दिए, लक्ष्मी की बाप रे बाप, देवता और ऋषि सब नारायण भी खड़े थे, लक्ष्मी जी उनके पास गई उनके सामने, लेकिन ये उनको कोई भेंट, उनके पूजा, कोई अभिषेक कुछ नहीं व्यवस्था की। लक्ष्मी जी निकल तो सार, इतनी बुद्धि मारी गई सब, चाहे देवलोक ऋषि लोग, ये लोग वो ज्ञान हो, कुछ काम नहीं करता, इसलिए लक्ष्मी जी से रिजेक्ट किया। तो ज्ञान है लेकिन ईमान नहीं, ये है लेकिन ये नहीं, ये नहीं, सब रिजेक्ट, निष्पृह, केवल हरि और हरि के दास, ये है निरत, किसी को अपेक्षा नहीं करते, किसी चीज को अपेक्षा नहीं करते ना, निडर वही रहते। एक बार की एक कथा मैंने सुनी हूं कि विदेशी लोगों का एक गुण है, मतलब भारतवर्ष धर्म वर्ष है, लेकिन विदेश के लोगों के पास एक गुण है, कोई चीज को अगर जानना चाहेंगे लग जाएंगे उससे किसी चीज जान लगा कर, इतने भी रिसर्च करते हैं, इतने हद तक जाते हैं, तो एक गुण तो है उनको, बहुत रिसर्च करके डाटा निकालते हैं। तो एक विदेशी फिलोसोफर को बोलते हैं कि जर्मन के थे, उन्होंने एक रिसर्च सब्जेक्ट लिया भगवान के ऊपर, ये जानना चाहता हूं परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो जितने उनके पास किताब शास्त्र जो मिला सब पढ़ डाला, सबके ऊपर खूब निरीक्षण किया, परीक्षण किया, लेकिन पता चला कि ये सारे भगवान के ऊपर जानकारी हो तो भगवान की फैक्ट्री तो इंडिया में है, यहाँ क्या देखते हैं। तो उनको भारत आना ही पड़ा, मतलब भगवान के बारे में जानकारी करना हो तो भारत जाना पड़ेगा भाई, वो ही है उनका। तो भारत आया, भारत आकर के पहुंचा तो जिस दिशा में गए वहां से दूसरे भगवान, यहाँ गए दो भगवान, दो भगवान, भगवान के तो यहाँ खजाना है। बोला अरे क्या फंस गया मैं, तो यही भगवान है, यहाँ तो भगवान ही भगवान है, हाँ देवी भगवान, देव भगवान, ये भगवान, वो भगवान, सारे भगवान, सबके अपना अपना प्रमाण, अपना झकार हो गया, क्या करूं। तो फिर भी उन्होंने विदेशों का गुण है, वो रिसर्च करने लगा, भारत के हर प्रांत में जा जा करके, हर मंदिर में, हर गांव में, हर जा करके वहां समय दे करके, उनसे जानकारी लेकर के, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, बिल्कुल डाटा लिया कि क्या है भगवान, उसमें कितना भगवत गुण है, क्या है, सारे रिसर्च किया। कई सालों लग गया भारत, कई साल के बाद में जब उन्होंने वापस जा रहा था तो उस रिपोर्ट लोग मिला, इतने साल तक इंडिया में भगवान के चक्कर में फंसे थे, भाई बताओ तो सही, भगवान को भी जानकर हमको दो। तो बोला कि आप लोग इंडिया में तो एक से एक पढ़े हैं भगवत तत्वज्ञ, हम क्या, लेकिन हमने पूरी भरसक पूरे भारत वर्ष को छानबीन किया ना, फिर आपके रिपोर्ट क्या, मतामत क्या भगवान के बारे में। तो उन्होंने बताया कि मैं भारत के हर प्रांत में गया, जो जो लोग जिसको भगवान कहते हैं उनको देखा, बड़े गौर से देखा, उनके बारे में सुना, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में गवेषणा की, और मुझे यही पता चलता था ये भगवान लोग कहते हैं, सतम सब कहते हैं, लेकिन ये भगवान अगर है फिर वो हाथ में कोई त्रिशूल लिया है, कोई चक्र लिया है, कोई खड़ग लिया है, कोई और क्या लिया है, बोलिए अस्त्र शस्त्र ले मतलब कुछ काम है उसका करने के लिए, अनाक्षर कुछ तो है, जब कुछ ऑन ड्यूटी रहते तब तो यूनिफॉर्म पहनते सब रहते ना अस्त्र शस्त्र धारण, किसी के पास गया सब कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए और गाड़ी में बैठे हुए, बोले बाप रे बाप इसकी तो ड्यूटी है, गाड़ी में चढ़ता घुसने और अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार कुछ काम के लिए, जब काम करने वाला कोई काम करने वाला तो होगा किसके लिए काम, तो ईश्वर नहीं हो सकता है, ठीक है यहाँ के लोग मानते हैं बड़े हैं पावरफुल है, लेकिन वो भी किसका काम कर रहा है, सारे प्रांत रिसर्च कर चुके हैं ना, फिर ना वो सब जगह वही देखा, कोई ना कोई ना कोई आयुध धारण किया है, कोई गाड़ी में बैठा है, कुछ किया है, अंत में आया वृंदावन में आकर देखा, मेरे मन को लगा कोई ना कोई गाड़ी फाड़ी नहीं चढ़ता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, फिर बोले फर्स्ट क्लास नदी के किनारे वन में जमुना तीर वनचारी अपने गालखंड के साथ बांसुरी बजाकर घूम रहा है मस्त, फिर लगा यही होगा यही भोग करता है, उनका कोई टेंशन नहीं, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हैं, यही बिल्कुल इसका कोई काम नहीं, इसका अपने आनंद लौट रहे हो, तो मुझे तो लगा कि वही भगवान होना चाहिए मेरे रिसर्च के अनुसार, तो उनके रिसर्च में उन्होंने डिसाइड किया कि केवल कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं, क्योंकि उनका कोई चिन्ह नहीं था कि कोई ड्यूटी करते हैं किसका, कि कोई आवश्यकता है नहीं, और आनंद भोग करने के लिए जो जो आवश्यकता लक्षण सारे उनके था, सारे परिवेश ये सब, जो बहुत बड़े आदमी अमीर होते हैं जिस प्रकार रहते हैं वो फिर भी डर रहता है, लेकिन वो बिल्कुल निडर होकर इस प्रकार, तो इसलिए कृष्ण ही केवल भगवान है, वो अपने बुद्धि से इतने सा लगा करके निर्णय किया सही था, और भारतवर्ष में वैदिक शास्त्र कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्व कारण ईश्वर परमा कृष्ण अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण, वही है सबके आदि सर्व कारण के कारण, तो इस प्रकार कृष्ण ही है जो पूर्ण निरपेक्ष है, स्वराट है, इतने स्वाधीन कोई नहीं हो सकता, सब पराधीन है, सब केवल कृष्ण ही एक है जो पूर्ण स्वाधीन है, बस बांसुरी बजाते हुए अपने मस्ती में रहते हैं और कोई चिंता नहीं, सब अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं, और भागवत में वर्णन है उसका, भगवान कहते हैं मद भयात बाती वायु मद भयात तपति सूर्य हो मद भयात भगवान, सारे बोलिए सारे जो काम कर रहे हैं ना ये मेरे डर के बारे से काम कर रहे हैं, मैं हूं इसीलिए सब अनाक्षण, सारे दुनिया प्रकृति देवी देवता सब काम कर रहे हैं किस लिए, उसका पीछे एक प्रिंसिपल है, जानते कौन सा प्रिंसिपल, फियर, भय ना हो सारे गड़बड़ हो जाएगा, जहां भय नहीं है यह काम होगा नहीं, सब गड़बड़ करेगा, तो इसलिए भगवान ने तो शासक अगर उनके पास क्षमता नहीं दूसरे को भ्रमित करने के लिए तो क्या शासक है, क्या शासन कर सकते, कोई उसको डरे ना तो फिर क्या नहीं माने, तो इसलिए भगवान ऐसे डरा करके लगे संपूर्ण जगत को, एक एक बोले सब मेरे डर के काम करते हैं, डरते हैं पिटाई करते हैं क्या करते हैं, वो क्या करते हैं खाली नजर पड़ते से वो डर के मेरे काम करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मया धक्केण प्रकृति सूयते सचराचरम, चराचर जगत में सारे प्रकृति कार्यरत है, किस लिए कर रहे थे ना माया अध्यक्षेण, अध्यक्षता को बोलते हैं कि सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट सुपर अध्यक्षता की दूसरी ये करते हैं अक्ष मतलब आंख, अधि अक्ष मतलब अधिकार पूर्वक आंख रखना, अधिकार पूर्वक आंख रखा है, कभी कभी हम लोग आप में से कोई काम कराने वाले सब तो कोई कराते होंगे, कोई छोटे मोटे लेबर को बुलाया उतना काम कर दो और आप चले गए लेबर को छोड़ करके, वो काम करेगा तुरंत बढ़ जाएगा, काम करने वाला क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वो ना हो जैसे मुंह मुड़ा पांच मिनट बैठ जाएगा, हमारे अंदर चिटिंग प्रोपेंसिटी इतने ठुस ठुस कर भरा है पांच मिनट चांस पाने से पांच फुट बढ़ जाऊंगे। बोले तो बढ़ा, चाय खा रहा था, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा आगे। कैसे भी ठगने का प्रवृत्ति ऐसे है, तो इसीलिए कितने भी पैसा दो कुछ करो, एक आदमी को पेमेंट करके खड़ा करेंगे तो भाई लेबर के सामने खड़ा ही रहो, काम कुछ नहीं, केवल देखते रहो, तू नजर हटाओ तो काम से हटे। तो इसलिए हमेशा नजर रखना पड़ेगा। एक तो मालिक है, कंट्रैक्टर और ठिकादार एक होता है, ठिकादार होता है ना, और क्या होता है, लेबर के ऊपर देखने वाला सुपरवाइजर ठिकेदार है, तो होना पड़ेगा कोई खड़ा। वो बेचारा भी परेशान हो जाते, जब कहीं पिशाब करने चला गया, बाथरूम चला गया, तब भी लेबर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। हाँ, तो ये जो चीटिंग प्रोपर्टी हमारे अंदर आया कहां से? ये संसार में भरा हुआ है पूरे ऊपर से नीचे तक। हाँ, ब्रह्मलोक से लेकर डाउन पाताल लोक तक सब में पोटेंसी है, देव सारी ठगने का प्रवृत्ति। तो इसलिए भगवान बोलते मया अध्यक्षेण, मैं अधिकारी हूं इसलिए मेरा नजर पड़ा हुआ। अधिकारी का नजर है तो लेबर भागेगा, गरीब बाबू अधिकारी देख रहा है, पेमेंट नहीं देगा। डर क्या है, ये नहीं मिलेगा काट देगा। मुझे कोई बता रहा था बहुत ही, कोई बेस में एक स्टूडेंट बोलते बेस इंचार्ज बोला, परेशान हो गया, कुक रखा हूं, छह सात हजार का महीना भी दे रहा हूं, ये सिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, कितने कर रहा, फिर भी गलती कर रहा, कभी नमक नहीं डालता, कभी ये नहीं करता, कभी ये भूल जाता, ये भूल जाता, सिखाते में दंग हो गया, मैं क्या करूं, तो वो गलती कर रहा है, सूत्र है, पेमेंट से काम कर रहा है, उसको बोल के समझाने से काम थोड़ी होगा। सूत्र का शासन कैसे होता है, डांट पूछ नहीं, वो काम कर रहा है सारे रोकड़े के वजह से, उनका प्राण, उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य उसी में है, उनके जीवन उसी को बोलो, नमक नहीं डाला 50 रुपए टिकट हो जाएगा, ये नहीं किया 100 रुपया माइनस हो जाएगा, ऐसे लिस्ट लगा दो, काल को देखना कैसे भूल हो गया, हो जाने, क्योंकि उसी में उनका जान है, इसमें कट जाए तो पूरा चौकन्ना होकर काम करेगा, 5 बार देखा कभी डाला कि नहीं मैंने। इसी में सारे जीवन उसके लगा हुआ है प्राण, इसी में अर्थगत प्राण, अर्थ में प्राण लगा हुआ है। तो उसी में उन शासन होंगे। तो भगवान इसलिए वो जानते हैं किसी को क्या जरूरत है, इसीलिए अधिक्षते अधिक्ष है, अधिकारी के रूप में आंख डाले हैं नजर, तुझे ये नहीं मिल रहा हुआ अपने बाप, एक बार काम में सब लगे हैं, सारे देवता, सारे ऋषि, सारे दानव, सारे ऋषि, सब अपने अपने ड्यूटी में है, कि नजर लगा हुआ है ना, और जहां नजर हटी तो दुर्घटना घटी तब तो इसलिए हमारा सब नजर कहां जाता है, लक्ष्मी जी के ऊपर, लेकिन वो तो किसी के नजर में है, उनकी नजर किसी के ऊपर है, तो हमको नहीं लगता, हम तो उल्लू हो गए, दिखाई नहीं पड़ता, हम एक उन्हीं की नजर में जाते, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई उनकी नजर किसी के ऊपर पड़ा है, वो हमको नजर देख नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम हाथ धोकर पीछे पड़े है ना। तो इसलिए सारे लक्ष्मी उपासक, अगर लक्ष्मी जी को सचमुच सौभाग्य को पाना चाहते हैं, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकमात्र सरल सहज उपाय है लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उपासक बन जाओ, अपने आप सौभाग्य बरसेगी, अपने आप बरसेगी। यानी का एक कहानी है जगन्नाथ जी की भक्तमाल में, एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास, उन्होंने बड़े भक्त थे, उच्च कोटि के ठाकुर जी के पास जाते थे, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ उन्होंने नहीं पढ़ते थे, खूब गाली देते थे, ऐसे कर लक्ष्मी जी भगवान के पास बोलते थे कोई बदमाश है, क्या करूं, मानता नहीं, मेरा तो है बेटा अच्छा है, क्या अच्छा बोलते हैं, तो लक्ष्मी जी झगड़ा होता था, लक्ष्मी जी बोले देखो बढ़िया, मैं बोल देता हूं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग्य तो मैं हूं, ऐसे मरवाऊंगी तुझे, अपंतरा में मरोगी देखना, तब पछताओगी, अंते नारायण स्तुति करेगा, तेरा हाल खराब कर दूंगी, अरे जा तू क्या करेगी, ऐसे गाली दी लक्ष्मी, तो इधर तू ऐसे दरिद्र भिकारी, ऐसे मुझे गाली देता, अरे भिकारी हो तो तेरे ऊपर थोड़ी नजर करना। आप लक्ष्मी जी की गुस्से में लाए बड़े प्राण, क्योंकि जो भगवान के क्यों डरेगी, किसी नहीं डरेगी, माता जी को नहीं डरेगी, मुंह तोड़ जवाब दे दिया उनको, लक्ष्मी जी गुस्सा हो गए, बोले देखता हूँ। तो इसी बार रथ यात्रा के समय हर साल आता था, उसका गांव दूर था, चल चल कर आना था, चल कर आना था रथ यात्रा के समय। वो इतने गर्मी बारिश होता है भीड़ में आ रहा था, भयंकर बुखार चढ़ गया। लक्ष्मी जी के करते थे कैसे निकल सकता, भयंकर बुखार हुआ, चल नहीं पाया। और रास्ता के किनारे रोड के सामने गटर जा रहा था और सड़ा हुआ पूरे सिटी का गटर, उसी में गिर करके पड़ा धमासा गटर के अंदर, जहां सुअर वुअर सब चल रहे थे, गटर के अंदर गिर पड़ा, लगा कि और प्राण नहीं बचेगा, वहां ज्वर लगा है, भयंकर पीड़ा, उसमें गटर में गिर के मर रहा है। अब तो वही गटर में मरते समय में बिल्कुल एकाग्र ध्यान किया, प्रभु आप आज धारूढ़ होने जा रहे हैं, मैं इस गटर में पड़ गया, आप गाड़ी चढ़कर कहां जा रहे, मेरे पास नहीं आएंगे प्रभु, जीवन भर में आपका उपासना किया, बस इतने एक तक एकाग्र ध्यान किया। भगवान ने बोले थे गाड़ी में बाद में आऊंगा, थोड़ा जा रहा हूं, बहुत इमरजेंसी काम है, आकर गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी में बैठे नहीं, पहले चल पड़े। बोले लक्ष्मी भाई क्या जाना है, तो बोले कितने जल्दी क्या पड़ी है ना, चलो मेरा साथ में, बोल नहीं सकता। लक्ष्मी जी साथ में चले, भगवान ने तुरंत गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके निकल गए। अब जा करके वहीं लैंडिंग किए, वो गटर के पास लैंडिंग करके उतरे, उनके हाथ पकड़े, बोले बोलिया इसे प्रभु मरने जा रहा। अरे जब लक्ष्मी का नजर पड़ा, बोला अच्छा तू ही है ना, मर रहे ना अभी गटर में बैठ करके, अभी पता चल रहा ना कैसे हाल है, इसे गंदगी सुअर फुअर खा रहे, गटर में मर रहा है, पता चला मुझे गाली दे रहा था हाँ। तो इसी बात को सुनकर मरते समय में वो भक्त बोलिया ने बोला हाय हाय तू थक गई, बुद्धि मारी गई तेरा, ये गटर है और क्या, अच्छा तब भी नहीं पता चलता। अरे जहां पे साक्षात आप और लक्ष्मीपति नारायण आके पहुंचे खड़े हैं, वो वैकुंठ होगा ना, गटर होगा। अरे वो अच्छा अच्छा हम ही अरे गया, उनको तभी समझ में आया वो महंगा, तो मैं और प्रभु दोनों है, तो वैकुंठ होना चाहिए, तो फिर गटर कैसे बनती है, गटर देखती है, अरे तो वैकुंठ है। भगवान ने हंसने लगे, बोले हाँ आप इसे हंसते ना कि तुम मेरे भक्तों के साथ पाला मत लो, उनके साथ पाले मत पड़ो, हार जाओगी वो तो बहुत ऐसे होते, किसी प्रकार से उनके पाले मत पड़ो, वो तो ऐसे निडर होता है गटर को ही वैकुंठ बना देने वाले, तो उनके पल्ले मत पड़ो। हर प्रकार से एक भक्त चित्रकूट महाराज, पार्वती जी गुस्से में उनको आले दे दिए, अभिशाप दे दिए। शंकर जी बोले पार्वती बोले तुम फंसो मत, बोला ओके नो प्रॉब्लम, असुर बन गया। पार्वती चौंक गई, असुर बनने के साथ दिया आसान से एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो है भगवान को भक्त क्यों करेगा। स्वर्ग अपवर्ग नरक अपितुल्यार्थ दर्शन, कहीं भी जाए मेरे लिए तो वही हरि दर्शन होगा, भले कहीं भेज दे वो क्या, उनके कोई डर नहीं, लक्ष्मीपति के पास किसी को भय नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार असली निर्भयता सौभाग्यता, असली सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अमृत के पीछे मत भागो, वही लक्ष्मीपति के पास, ये एक शिक्षा है उसके पीछे, शायद कोई लोग कुछ समझते हैं ना? तो अमृत के चक्कर में जाएंगे, अमृत के चक्कर में जाकर तो अभी लक्ष्मी जी के पीछे कितने क्या क्या होगा इतने लंबा, और भगवान में बनेगी फिर मोहिनी बनेगी, अब उसी में देखना सारे डामाडोल हो जाए। लक्ष्मी जी जितने उनको फंसा नहीं पाए, भगवान तो इमीडिएट सारे कदम फंस जाएंगे, सब अमृत के घड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो ये है लक्ष्मी जी जो समुद्र मंथन से प्रकट होकर के, प्रकट हुई थी क्या, प्रकट होना क्या होता, भगवान की थी, भगवान की है, लेकिन ये इसलिए प्रकट हुई कि उन्हें दिखाने के लिए रे अमृत लोभी इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ने वाले, सौभाग्य तो आपके सामने गुजर रहा है, आप उसने अरे हरे कृष्ण बोलने से क्या होगा, इसमें क्या प्याज लहसुन नहीं खाने से इसे क्या होता, दुर्भाग्य है दुर्बुद्धि है, बड़े आसान से प्राप्त होता नहीं लगे, यही है जीवन, तो इंद्र तृप्ति के पीछे पड़े रहेंगे, बेकार जीवन चला जाएगा हताश। तो इसलिए इसी को देख करके समझ में आना चाहिए, अगर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सचमुच लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति नारायण है, नारायण के पति भगवान कृष्ण की उपासना करो, तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही आ जाएंगे, है ना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का?